نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير قال الله تبارك تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہاں بیٹھنے کا موقع دیا. ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان قریب ہے اور رمضان کے ساتھ ہی قرآن کا تصور ذہن میں آتا ہے. قرآن پاک ہماری ہر مشکل کا حل ہے. کچھ لوگوں نے اس کا علاج یہ کیا کہ اس کے تعویذ بنا کر گلے میں یا ہاتھوں میں لٹکا لیے, کچھ نے اس کے خوبصورت قطعے بنائے اور اس کو دیواروں پہ لگا دیا, اور کچھ نے کچھ اور بھی کیا. کچھ نے بیٹیوں کی شادی کے موقع پر اس قرآن کو اوپر رکھا اور اس کے سائے میں بیٹیوں کو رخصت کرنا چاہا. انہوں نے جو بھی کیا ہمیں اس سے کچھ سروکار نہیں, لیکن ہمیں اتنا پتہ ہے کہ یہ قرآن ہر مرض کی دوا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے جو وعدہ کیا تھا آدم اور حوا کے دنیا میں آتے ہوئے کہ اب تو آپ جنت سے جائیے, ہاں اب اگر آپ کو دوبارہ اس جنت میں آنا ہے تو آپ کے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی, آپ اس ہدایت کو قبول کریں گے جو بھی لوگ, تو ان کو ہم اپنے پاس بلائیں گے اور ان کو کسی قسم کا خوف اور غم نہیں ہوگا. اگر آپ سمجھ گئے ہیں تو یہ سورۃ بقرہ کا تقریباً فورتھ رکوع ہے. سورۃ بقرہ کے چوتھے ہی رکوع میں آدم اور ابلیس کا قصہ ہم پڑھتے ہیں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, یہاں سے یہ بات شروع ہوتی ہے اور ختم کہا ہوتی ہے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, کہ جو بھی میری اس بھیجی ہوئی ہدایت کو مانے گا, قبول کرے گا, پھر اس کو کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا. تو کیا پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم کے دنیا میں آتے ہی اس بات کا یقین دلا دیا کہ جس نے اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کو اپنے لیے مشعل راہ بنایا, اللہ تعالیٰ اس کو ضرور ہی ضرور کامیاب کرے گا. لیکن آج ہم اللہ ہی کی بنائی ہوئی اس دنیا میں دیکھتے ہیں کہ آج ہم طرح طرح کے فتنوں کا شکار ہیں. آج اگر آپ اور میں انگلیوں پہ گنیں, آپ میرے ساتھ ذرا گنتے جائیے 1-2-3 کر کے, دیکھتے ہیں کہ آج کے دور کے فتنے کیا ہیں. اور ان فتنوں میں خاص طور پہ وہ فتنے جو ہماری یوتھ کے دماغوں پہ ہیں. آج کا ہمارا موضوع بہت اہم ہے, اللہ کرے کہ ہم اس موضوع کا حق ادا کر سکیں. انشاءاللہ فتنوں کی لسٹ بعد میں بناتے ہیں, لیکن جو بھی میں نے آپ کے سامنے آیات رکھی ہیں, کہہ لیجئے کہ دور موسیٰ کے جو فتنے تھے, اور اس میں ایک بہت بڑا فتنہ فرعون کا ایک ایسا نظام تھا کہ جو اللہ کے قانون سے ٹکراتا تھا. انا ربکم الاعلیٰ کہہ کر خود کو خدا بنواتا تھا, سجدے کرواتا تھا, ہر قانون اپنی طرف سے بھیجتا تھا کہ میری ہی بات مانی جائے, حتیٰ کہ ایسا وقت بھی آ گیا کہ اس نے بنی اسرائیل کو مجبور کر دیا کہ جو میں کہتا ہوں اس کو مانو. یاد رکھیے کہ بنی اسرائیل اپنے دور کی مسلمان قوم تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے موسیٰ علیہ السلام سمیت بہت سارے پیغمبروں کو بھیجا, لیکن جب قومیں کتاب ہدایت سے دور ہو جاتی ہیں تو ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ سورۃ بقرہ میں جادو کے موضوع پہ جو آیات ہے اس کو سامنے رکھ کے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ, اور وہ پیچھے لگ گئے ان چیزوں کے جو سلیمان علیہ السلام کے دور میں پیش کی جاتی تھیں. اور وہ کون سی چیزیں تھیں؟ فکشن, جادو, ٹونا. کیونکہ جب اس قسم کی چیزیں عام ہو جاتی ہیں تو لوگوں کو اللہ کی کتاب اچھی نہیں لگتی. افسوس کی بات ہے آج امت مسلمہ کا حال بھی کچھ اس سے مختلف نہیں رہا. اگر میں سورۃ بقرہ کی وہ آیت آپ کے سامنے نمبر ہی بتا دوں, آپ کو کم از کم گھر جا کر پڑھیے گا, آپ کو ایسے لگے گا کہ یہ اس دور کی نہیں, یہ آج کی دور کی بات ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 110 سورۃ بقرہ, وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ, اور جب آ گیا ان کے پاس وہ رسول اللہ کی طرف سے مصدق لما معہم، جو تصدیق کرتا تھا اس چیز کی جو ان کے پاس تھی، یعنی رسول ہمیشہ پچھلے رسول کی شریعت کی تصدیق کرتے ہوئے آتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ نبذ فریق من الذین اوت الکتاب، پھینک دیا اہل کتاب کے ایک گروہ نے کس کو؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو. کہاں پھینکا؟ وراء ظہورہم، اپنی پشتوں کے پیچھے، بیہائنڈ دا بیک، پیچھے ڈال دیا، لیس پرائرٹی کر دیا. کانہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں. چند سیکنڈ کے لیے رکیے، مجھے لگتا ہے آپ ابھی تک اس موضوع کے ساتھ کوپ نہیں کر پائے. میں دوبارہ چند جملے بولتی ہوں تاکہ آپ کے اور میرے لیے شرح صدر ہو جائے. آج کے دور کے فتنوں کا حل، آج کا ہمارا موضوع یہ ہے. رمضان قریب ہے، ایک بار پھر قرآن کا دور ہوگا، اور ہم ہر سال دورہ قرآن کو عادت کے طور پہ نہیں، عبادت کے طور پہ کرتے ہیں. کیونکہ جب عبادت عادت بن جاتی ہے تو اس سے روحانیت ہی چلی جاتی ہے. ہم آنکھیں بند کر کے سورۃ فاتحہ سے کل واللہ تک پہلی رکعت پڑھ چکے ہوتے ہیں، اور ہمیں کچھ بھی نہیں پتا ہوتا کیا پڑھا. تو الحمدللہ جو ساتھی پہلے سالوں سے بھی سنتے ہیں ان کو بھی پتہ ہی ہے، جن کو نہیں پتہ تو ان کے لیے یہ بات شاید نہیں ہوگی کہ ہر سال دورہ قرآن کا اہتمام کیا جاتا ہے. الحمدللہ یہ ہمارا تقریباً 18th دورہ قرآن ہوگا اس سال اللہ کے حکم سے. ہر سال میں ڈفرینٹ تھیم کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. قرآن ایک ہی ہے، اس کا ترجمہ نہیں بدلے گا، اس کے لفظ نہیں بدلیں گے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. سورۃ ہجر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. قرآن ایک ہی ہے، لیکن اس قرآن میں بدلتے ہوئے وقت کے تقاضوں کے مطابق ہر مسئلے کا حل موجود ہے. آج آپ کے سامنے تقریباً 15 سے 20 فتنے رکھوں گی ون بائی ون، اور قرآن کی آیتوں سے اس کا جواب ہے. ہمارے اس سال کے دورے قرآن کا مین تھیم یوتھ ہے، آپ جیسے ینگ پیپل، جن کے حوصلے بلند ہیں، جن کے ارادے بلند ہیں، جن کی زندگی میں ابھی چیلنجز بہت سارے ہیں. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض دفعہ ہوتا کیا ہے کہ انسان صرف بیماریوں کا تذکرہ کرتا ہے، علاج نہیں پوچھتا. آج ہر دوسرا بندہ نوجوان نسل کو برا کہتا، بیکار کہتا، بگڑا ہوا، ہدایت سے دور کہتا ہوا کہتا ہے، لیکن اس کا علاج نہیں بتاتا. اس کا علاج اس قرآن میں ہے. ہم اس سال انشاءاللہ دورے قرآن میں پورے قرآن میں سے ہر ہر اس موضوع کے اوپر بات کریں گے جو آج ہماری یوتھ کا پرابلم ہے. اور ذرا دم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ اقبال اپنی اس مٹی سے مایوس نہیں ہے، پانی نہیں پڑا. اور حقیقت یہ ہے ہمارے دلوں کی مٹی بنجر نہیں ہے، زرخیز ہے، لیکن ابھی پانی نہیں پڑا. بالکل مثال دے کے سمجھاؤں گی، جیسے عمر فاروق کیا تھے اسلام سے پہلے؟ سٹبن، کفر پہ پکے، رسم و رواج کے دل دادا، نام نمود پہ مرنے والے. کیا کچھ تھا، کیونکہ دل کے اندر خیر تھی پر اوپر پانی نہیں پڑا تھا. اور دلوں کے اوپر جو پانی پڑتا ہے وہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یہ قرآن کا پانی، وہی الٰہی کا پانی جب دلوں پہ پڑتا ہے دل زرخیز ہو جاتے ہیں، پانی ملتا ہے اور ادھر سے خیر کے پودے نکلتے ہیں. ہر صحابی اس کی مثال تھا. دور کفر میں جو بھی برائیاں تھیں ان میں سے کچھ نہ کچھ ان میں موجود ہوں گی، لیکن قرآن آتا گیا، دل دھلتے گئے اور تبدیلی آتی گئی. آج ہماری اس پیاری سی ینگ نسل، ہماری اس یوتھ کا بھی یہی علاج ہے. آپ اپنے بچوں سے گلے رکھیں، اپنی بیٹیوں سے شکوے رکھیں، آپ اپنے ملک کے سیٹ اپ پہ تنقید کریں، آپ کچھ بھی کہہ لیجئے، آپ کی ان باتوں سے فائدہ نہیں ہوگا جب تک آپ نے میں نے اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو اس قرآن کے ساتھ جوڑنا نہیں ہے. یہ قرآن جب پیچھے ڈلتا ہے، جیسا کہ اس وقت ڈلا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی اسی بات کا تذکرہ کیا کہ جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول آتا تھا وہ کتاب لے کر جو اللہ نے بھیجی، تو یہ اس کتاب کو تو پسے پش ڈال دیتے تھے. چند سیکنڈ کے لیے سوچئے، آج یہ قرآن ہمارے پاس کدھر ہے؟ کیا ہم نے بھی اس کو پیچھے نہیں ڈالا ہوا؟ کیسے نہیں؟ آپ کہیں گے توبہ کریں، ہم تو قرآن کو بالکل بھی پیچھے نہیں ڈالتے، ہم تو قرآن کو بالکل بھی پسے پش نہیں ڈالتے، ہم تو اس کو اوپر والے ریک پہ رکھتے، جہاں پڑا ادھر سے گزرتے نہیں ہیں، پیچھا نہ ہو جائے، بیک نہیں کرتے اس کو. اور اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ قرآن اگر ہمارے ہاتھ سے گر جائے تو اس کے وزن کاٹا دیتے تھے لوگ پہلے، اب پتہ نہیں کیسے دیں گے. ایک یو ایس بی گر جائے اس میں پیس قرآن ہے تو آپ اس یو ایس بی کا کیا وزن ڈالیں گے؟ بس سمجھ گئے، قرآن کو پیچھے ڈالنا کیا ہوتا ہے؟ لیس پرائرٹی. जब सारे कामों से फारिग तब आएंगे इधर। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि ऐ खुदा मुझे दुनिया में क्यों भेजा, अब भेज दिए, कारे जहां दराज है अब मेरा इंतजार कर, अब मुझे बहुत सारे काम है, जब मैं फारिग हो जाऊंगा फिर आऊंगा तेरे पास। हमारा आज यही हाल है, आप कैसे एक दीन की दावत हो और एक दुनिया की दावत हो, आपको खुद जवाब पता है, किसके साथ माजरत है किसके साथ नहीं है, नमाजें डिले क्यों होती हैं, सारी नमाजें जमा करके रात को क्यों पढ़ी जाती है, क्योंकि किताब अल्लाह वरा जहूरिहिम, और ये भी तो था लेकिन इसके साथ इस किताब की तालीमात को पसे पुश डाल दिया। मैं चंद सेकंड के लिए सिर्फ खुद अपने आप को यकीन दिलाने के लिए और आपको साथ लेने के लिए एक मिसाल देती हूँ, बिलफर्ज़ मुहाल, हमारा ईमान है कैसा नहीं होगा, इट्स इम्पॉसिबल, लेकिन नबी सल्लम को मौजज़ाना तौर पे दोबारा दुनिया में भेज दिया जाए, पहले से कुछ ना बताया जाए, और जब तक नबी को कुछ बताया ना जाए उसको भी नहीं पता होता, क्योंकि आलिमुल गैब तो अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह के नबी ज़रा सा हमारे इस मुल्क और हमारे मुसलमान इलाकों से गुजर के तो निकले, एक शादी खा लें, एक मरग वाला घर देखाएं, दो चार ब्रदर्स की किसी कारोबारी डील को देख लें, किसी मजदूर को मजदूरी में खयानत करता देख लें, बच्चों की तालीमी सरगर्मियों को देखें, सच बताइए क्या वो अपने ख्याल से ये गुमान करेंगे कि ये मुसलमान मुल्क है। इल्ला माशाल्लाह। आज हम अपने अमल में देखें तो हमने इस किताब को वाकई पीछे डाला हुआ है, शादी माशरे के मुताबिक, तिजारत न्यूयॉर्क के मुताबिक, रस्म और रिवाज दिल्ली और बॉम्बे से आते हैं, कपड़े हमारे वेस्ट से आते हैं, पानी हमारा कहीं से आता है, और हम कहने को मुसलमान हैं। जब लोग अल्लाह की किताब को छोड़ते हैं तो याद रखिए कि जगह खाली नहीं रहती, जैसे हदीस में आता है ना कि जब इल्म की महफिलों में या किसी भी जगह बैठकर हम बीच में जगह खाली छोड़ देते हैं तो वहाँ भी फरिश्ते आ जाते हैं। जब हम अल्लाह की किताब को अपनी ज़िंदगी से निकाल कर एक रस्मी कलामी तौर पे काम करना शुरू करते हैं तो फिर उसकी वजह पे ज़िंदगी में बेकारियात आने लगती हैं। आज हमारी उम्मत के साथ भी यही हुआ है, अल्लाह ताला हम सब पे रहम कर दे। हमने इस किताब को एक बरकत की किताब तो बना लिया लेकिन हमने इसको हिदायत की किताब बनाना गवारा ना किया। नतीजा क्या निकला कि वो लोग जो तबरकन और बरकत के लिए इस किताब को पढ़ते थे कुछ अर्सा पढ़ते रहे, लेकिन आज की जनरेशन के जहनों में ये सवाल है। एक माँ ने कहा कि मेरा बच्चा कहता है कि आप ये बताइए कि मैं कुरान क्यों पढूं जबकि मुझे समझ ही नहीं आता, इससे बेहतर है आप मुझे कोई किताब दे दें जिसकी मुझे समझ आती हो मैं वो पढूं। तो मैंने कहा कि बात तो उसकी बिल्कुल ठीक है, अगर हमने अपनी नस्लों को इस कुरान के साथ इसके पैगाम के साथ ना जोड़ा तो कल हमारे साथ भी यही होगा। हर बहन अपने अपने बच्चों के लिए सोचे, आपके बच्चों को कुरान की सारी सूरतों के नाम आते हैं, कुल कितनी सूरतें, उसमें से मक्की कितनी है, मदनी कितनी है, उनके शाने नजूल, चले हर सूरत का एक बुनियादी थीम, शायद चंद से सोच रही हूँ कि ये तो हमें भी नहीं पता, इल्ला माशाल्लाह। अब मुझे बताइए कि जब हम इस तरह का कुरान लेकर बैठे हैं तो क्या इसका जवाब वही नहीं मिल रहा जो कुरान में आता है, क्या फतो में नू नबी बबा दिल किताबी व तक फुरू नबी बात, क्या तुम तो बाज़ किताब के हिस्सों पर ईमान लाते हो बाज़ पे नहीं लाते, जहाँ दिल चाहता है दीन की इतना रगड़ा देते हैं, इतना रगड़ा देते हैं कि सारा दीन उस एक मसले को बना लेते हैं, और जहाँ अपने घर में शादी खुशी गमी है कहते क्या करें मजबूरी है अब क्या करें, बच्चे नहीं मानते बड़े नहीं मानते। तो याद रखिए ये दौरे कुरान हर साल जो किया जाता है ये आपके मेरे हक में भी हुज्जत है और मेरे आपके खिलाफ भी हुज्जत है। अगर एक आदतन ही करना है खानापुरी के लिए तो फिर तो बिस्मिल्लाह जैसे भी चाहें, तर्जमाएँ पढ़ते जाइए सुनते जाइए थोड़ा सा उस पर गौर करते जाइए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला अजर ज़ाया नहीं करता, फ़ायदा उसका भी आपको बहुत होगा। कुरान को तो बग़ैर समझे भी पढ़े तो समझ आता है, लेकिन जब इस किताब को हम अपनी अमली ज़िंदगी के पहलुओं के साथ नहीं देखते तो उसका नुकसान क्या होता है, किताब धरी की धरी रह जाती है मस्जिदों में मदरसों में या हमारे घर के कुछ खूबसूरत से कुरान रैक्स में, लेकिन अमली ज़िंदगी बिल्कुल फ़र्क है। याद रखिए कि जिस दौर में भी मुसलमानों का हाल ये हुआ तारीख गवाह है कि उस दौर के मुसलमान बहुत पिटे जिसमें आज का दौर भी है। आज आप और मैं अगर अपने इर्द गिर्द फैले हुए फितनों को देखिए तो एक लिस्ट तैयार करते हैं और इंशाल्लाह ताला पूरा महीना सब्र करते जाएंगे, आप लोग एक एक करके आयतों के रेफरेंस के साथ इन फितनों का जवाब आपको मुझे मिलेगा। अगर हम आज के दौर के मुख्तलिफ फितनों को देखें तो दो बड़ी किस्मों में बांट लीजिए, एक है फितने शहावात और दूसरा है फितने शुबहात, लिख लीजिए फ़ायदा होगा आपको इंशाल्लाह इसे। शहवत का फितना, जिसमें लस्ट है, इश्तेहा है, मनचाही जिंदगी है, ईट ड्रिंक बी मैरी और खाओ पियो मौज मस्ती करो, बाबर वैश कोश के जहां दोबारा नीस। जो मैंने अभी बात की उसको दोहराएंगे आप, पहला फितना कौन सा? शाहवाद का फितना। आप इसको समझे, शाहवाद के फितने को समझे? देखिए, आज हमारी उम्मत को ख्वाहिशात में डाल दिया। मन चाहा खाना, मन चाहा पहनना, मन चाही जीना हर दौर में ही होता था, लेकिन आज की तरह का बुत नहीं था। हर दौर में लोगों ने पहना भी, ओढ़ा भी, घर भी बनाए, शादियाँ भी की, लेकिन जो आज शहवात की इंतहा है, इतनी गंदी मिसाल है इस वक्त मेरे पास कि मेरा दिल नहीं कर रहा यहाँ बैठ के दूँ। और अगर आपको नहीं पता तो ना ही पता हो कि जो आज का लेटेस्ट ट्रेंड क्या चल रहा है, तस्वीरें खिंचाने में चले। किसी को पता है तो हाथ खड़ा कर दे, मेरे मुंह से ना ही सुने आप लोग। सेल्फीज है वो तो सबको ही पता है, ठीक है। और उसमें भी एक और है जी, बॉडी पार्ट्स। और आपको था कि आज का फैशन क्या? अपनी ज़ुबान खोलते, मैं खोल के नहीं दिखा सकती आपको। कुरान ने इतनी गंदी मिसाल दी, यल हस का लफ्ज़ है। सूरत अल अराफ़ में एक शख्स की मिसाल है कि अल्लाह ने जिसको कुरान की आयतें दी थी, अगर वो चाहता तो उसी के जरिए अल्लाह उसको इज़्ज़त देते रहते, लेकिन वो अपनी ख्वाहिशों के पीछे पड़ गया, अख़लत इलल अर्दी, ज़मीन से झुक गया, मादा प्रस्त हो गया। और उसकी मिसाल का मसल कल कुत्ते की मिसाल है। आज का लेटेस्ट जो कह लीजिए ट्रेंड जो मैंने देखा, अब तो उससे ऊपर भी कुछ आगे होगा, अपने मुंह से ज़ुबान निकालते हैं और पूरी राल टपकती भी वो तस्वीर खींच के अपने प्रोफाइल्स पे लगाते हैं। ये है आज के दौर में शहवात का। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ज़ुज्जिना लिन्नासि हुब्बु शहवाति मिनन निसा, सूरह आले इमरान आयत 13 या 14। उसमें जाकर इंशाल्लाह दारे कुरान में आप इस फितने का हल देखेंगे। आज इंसानियत को इतना ख्वाहिश परस्त कर दिया कि अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए इंसान मरने मारने पे तैयार है। एक बच्चे की पिक्चर किसी वीडियो दिखाई, माँ घर में, जवान बच्चा घर में आता है, माँ बेचारी इंतज़ार करी, हाय बेटा क्या हाल है, इधर आओ, ठीक है, बेजार सा बोलता है, बेटा मेरी दवा तो ला दो, गोली ख़त्म है, मैं बीमार हूँ। मामा आपकी दवा मैं नहीं कर सकता, मैं बिज़ी हूँ, ये है वो है। वहाँ से उठता है और कंप्यूटर पर बैठता है, वहाँ बैठ के एकदम उछलता है, ओह आज तो मदर्स डे है, पता नहीं किसने बनाया ये मदर डे और बन गया। फौरन वहाँ से उठता है, मामा मामा कमन कमन, और उसको साथ लेके एक सेल्फी खींचता है, कहता है देखना अभी इसको फेसबुक पे अपलोड करूँगा फिर कितने लाइक्स आते हैं। फिर वही अपनी माँ के साथ खींची हुई तस्वीर अपने फेसबुक पे डालता है और बैठ जाता है देखने, और फिर एक से एक करके इतने लाइक हो गए, इतने हो गए। ये है आज के दौर का फितना शहवात। सिर्फ नाम की हद तक हम अपने रिश्तों को निभाते हैं। याद रखिएगा, कुरान को छोड़कर, इसके अमल को छोड़कर, इसकी नसीहत को छोड़कर, आप और मैं अपनी आने वाली नस्लों को इन फितनों से नहीं बचा सकते। आज जिस तालीमी सिलसिले में हमें डाल दिया गया, ऐसे लगता है जो बच्चा मास्टर्स नहीं करेगा वो तो कामयाब ही नहीं होगा, जो डॉक्टर नहीं बनेगा वो तो कामयाब नहीं होगा। मैं मानती हूँ कि तालीम के साथ प्रोफेशन का बड़ा गहरा ताल्लुक है, लेकिन ये खुदा नहीं है। गरीब मजदूर को भी तो रोज़ी मिलती, और उधर मास्टर्स किए हुए बेचारे सड़कों पर भाग छानते हैं। तो शहवात का फितना एक। दूसरा जो फितना आज हमारी नस्लों के सरों पर मुसल्लत है, और मुझे अब यकीन आता जा रहा है कि हमारे मुल्क में भी आ गया। मेरा गुमान था कि ये वेस्ट वाले मुसलमानों का प्रॉब्लम है बेचारों का, लेकिन सिर्फ इन 3 दिनों में कई ऐसे वाक़या देख चुकी हैं अभी तक कि मुझे यकीन आ गया कि ये फितना इधर भी है। और वो फितना है फितनाए शुबहात, शुबह पैदा कर दो। पहला है फितनाए शहवात, दूसरा है फितनाए शुबहात, अपने दीन के बारे में शुबह पैदा कर दो। आज बच्चे कहते हैं वी आर नॉट मुस्लिम, आई एम एग्नोस्टिक, आई एम एथियस्ट। अब आप देखिए कि शुबहात और शहवात में किसी को डाल दिया गया, एक तरफ ख्वाहिशों में मारे गए और दूसरी तरफ हमें शुबहात डाल दी। आज हमारी यंग जनरेशन के जहन में बहुत सारे सवाल हैं, क्या इस्लाम ही सच्चा मज़हब है, क्रिश्चियनिटी क्यों नहीं? इंशाल्लाह ताला इस कुरान के ज़रिए इनका हल है। हम ये इलाज करेंगे अपना भी और अपनी नस्लों का कि हमारे दिलों से शक दूर हो जाए। देखिए नबी सल्लम के दौर में भी ऐसा ही था। अब्दुल्ला बिन उबई का तो काम ही ये था, हर नए दिन एक फितना उठाना। कभी उसकी ज़ात नबी सल्लम के घरों पे पड़ी, आपकी बीवियों पे पड़ी, कभी आपके साथियों पे पड़ी। गज़वा उहद में क्या हुआ था, मुकामे शौत से 300 कौन पलटे थे? ये फितनों वाले पलटे थे। हर दौर में वो लोग जो दीन को अपने मुफादात के लिए लेते हैं, और जब दुनिया की मोहब्बत दिल में खूब जाती है तो फिर याद रखिए उसके बाद ये फितने आ जाते हैं। एक और बहुत बड़ा फितना आज हमारे मुसलमानों के जहनों पे सवार है, वो है कुफार का गलबा। कुफार हर दौर में गालिब रहे, ये अलग बात है कि वो गलबा एक बुलबुले की तरह होता है, जो ही मुसलमान आगे आते हैं सच्चे ईमान के साथ, अल्लाह उस गलबे को दूर कर देता है। गुलिबत रोम को पढ़ लीजिए, सूरत रोम के आगाज़ में आपको पता लग जाएगा। लेकिन ये कुफार का गलबा, इसकी वजह क्या है, ये कब होता है? जब लोग इनफरादी तौर पर एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। क्या आज हमारी यूथ समेत हम सारे कुफार से मगलूब नहीं? ब्रांड्स, उनके नाम, उनके ट्रेंड्स, बॉयकट, फलांकट, खाने में, पीने में, अब तो हमारे खानों के नाम भी इटालियन और दूसरे हो गए। ऐसे लगते हैं मुसलमान यतीम है, इस्लाम बिल्कुल एक भांज मज़हब है, ना इसके पास कोई अपना कल्चर, ना अपनी मईशत, ना माशरत, सब कुछ दूसरों से ले लो और जमहूरियत के नाम के साथ इस्लामी लगा दो ताकि उसकी बैसाखी पर ये इस्लामिक हो जाए। ये सारे फितने आज हम अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं। आप जाके हरम में दुआएं मांगे उम्मत मुस्लिमा की इस्लाह हो जाए, नहीं होगी। अल्लाह मुसलमानों पर रहम कर दे, हो रहा? हर दूसरे तीसरे दिन क्या हो रहा? अल्लाह ताला कहते हैं कि तुमने नहीं देखा, हर साल में एक या दो बार तुम आजमाए जाते हो। अभी एक तरफ के मुसलमानों की गर्दनें कटती हैं तो दूसरी तरफ की शुरू हो जाती है, एक तरफ से आग में जलाए जाते हैं तो दूसरी तरफ उनकी गर्दनों पर छुरियाँ चलाई जाती हैं। क्या ये सब गलबे नहीं हैं? ये फितने नहीं हैं? हम आराम से बैठे रहे, मज़े, गर्मी, सर्दी, मौज, मस्ती, शादी, ब्याह, हम तो अपनी दुनिया बना रहे हैं। आज क्या पकेगा, कल क्या पकेगा, खूब कीजिए, इससे अच्छा और क्या है? मौज मस्ती करके दुनिया से चले जाएंगे, हम तो चले जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह को पता कितना वक्त रह गया, हमारी नस्लों का क्या होगा। यहाँ बैठ कर अपने एक एक बच्चे और बच्चों के बच्चे का नाम लीजिए, तसव्वुर में लाइए अगले 10 साल बाद दुनिया कैसी हो जाएगी। आप इससे सोच लीजिए, आज 2018 है, 2008 में हमारी मईशत माशरत कैसी थी? क्या अक्सर आप और मैं बैठ के ये नहीं बातें करते पिछला दौर अच्छा था? और हदीस में थे कि आमद के करीब आने वाला दौर पहले से बदतर होगा, बदतर होगा, बदतर होगा, हत्ता कि एक वक्त आएगा कि लोग जब कब्रिस्तान के पास से गुजरेंगे तो कब्र वाले को देखकर कहेंगे कि तुम कितने खुशकिस्मत हो कि तुम ज़मीन की गोद में हो, मैं ज़मीन के सीने पे भी चल रहा हूँ। क्या ये नहीं हो रहा? अल्लाह के नबी की हदीस है, क़यामत के करीब औलादें इतनी नाफरमान हो जाएंगी कि लोग बे औलाद को देखकर रश करेंगे कि शुक्र है तेरी औलाद नहीं है। यानी जिसकी औलाद नहीं उसका तो एक गम होगा ना, अगर वो भी हुआ तो, और जिनकी हैं उनके 100 गम है। तो याद रखिए, आज हम और हमारी नस्लें फितनों में। आज से 10 साल बाद हमारा तर्ज माशरत क्या होगा, मईशत क्या होगी? अल्लाह के नबी ने फरमाया, मुझे अपनी उम्मत पर फ़ख्र का अंदेशा नहीं है कि मेरी उम्मत गरीब रहेगी, मुझे इन पर ख़तरा है माल का, इन में माल आएगा लेकिन ख्वाहिशों की वजह से ये ऐसे भगटुट दौड़ेंगे जैसे कुत्ता काट ले तो वो शख्स दौड़ता है या उसके जिस्म में जहर दौड़ता है। आप ख़ुद देखिए, किसी इसके लिए कोई पढ़े लिखे होने की ज़रूरत नहीं है, किसी यूनिवर्सिटी, किसी मदरसे को ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ अपने पिछले 10 साल हालात ज़िंदगी को आज से टैली कीजिए, खाने पीने से शुरू कर लीजिए। जो वैरायटी आज खाने की है थी 10 साल पहले, इतना आपके बच्चों को एंटरटेन कोई करता था जितना आज करते हैं? बच्चा पैदा होने वाला हो जाए सर छुपा छुपा कर फिरते थे, मुँह नहीं दिखाते थे किसी को, आज दिखा दिखा कर बच्चों को हम शॉपिंग करते हैं, उनके आने से पहले उनके घर तैयार करते हैं। आप देखिए कि वजह क्या है। मैंने कल के दर्स में एक जो चीज़ बताई थी आपको भी बताना चाहूँगी। आप देखिए, एक होता है इल्म देना और एक क्या होता है, पढ़ाना। किताब, काफ ता अलिफ पा किताब, कुत्ता काफ ता अलिफ कुत्ता। कोई आपका टीचर उर्दू पढ़ाते हुए आपको कहेगा ना, लिखो काफ ता अलिफ कुत्ता, ये तो है पढ़ाना। कोई भी पढ़ा सकता है, आपके बच्चों को मुस्लिम पढ़ा दें, नॉन मुस्लिम पढ़ा दें, सब ए बी सी डी पढ़ाएंगे, अलिफ बा ता सा जीम हा हाई बनाएंगे, कोई हरज नहीं है। बट जो पढ़ाने के बाद इल्म देना होता है, अब एक नॉन मुस्लिम आपके बच्चे को कुत्ते के बारे में इल्म देगा, क्या कहेगा? कुत्ता बड़ा वफादार जानवर, कुत्ता बहुत प्यारी चीज़, इसको प्यार करो, इसको अपने साथ बिस्तर में रखो, कुत्ते के साथ अपना दिल लगाओ, और अगर एक मुस्लिम उस्ताद आपके बच्चे को कुत्ते के ही बारे में पढ़ाएगा, वो क्या कहेगा? कुत्ता बड़ा अच्छा जानवर है, बड़ा वफादार है, शिकार भी पकड़ता है, लेकिन ये नापाक है। और देखो, अगर इसने किसी बर्तन को चाट लिया तो उसको 7 दफ़ा पानी से और फिर मिट्टी से धो लेना, और ये और वो। ये फ़र्क है इल्म का। आज आपके मेरे बच्चे जिस तालीमी सिलसिले के अंदर जा रहे हैं, जो मुआशरे के अंदर रहन सहन है, आप ज़रा कभी अपने बच्चों का सिलेबस तो खोल के देखिए, क्या कुछ सामने आ रहा है इस वक्त, किस तरीके से, गैर महसूस तरीके से उनको उनके दीन से दूर किया जा रहा है। तो एक बहुत बड़ा फितना जो आज एक और हम मुसलमानों की लिस्ट में लगा हुआ है, वो क्या है कि मुसलमानों को उनके दीन के बारे में शर्मिंदा कर दो। वी आर सॉरी टू बी मुस्लिम। क्या करूं फिर मुसलमान जो आज किया हम शर्मिंदा, पैंट फाड़ कर घुटनों से आधे घुटने नंगे करके टखने ऊंचे करके जाती लड़की या मर्द को कोई शर्म नहीं आती कि लोग कहेंगे ये बड़े गरीब है। फैशन है ट्रेंड, आप क्यूलॉट्स के नाम पर टखने औरतों के उठा लीजिए, लड़कियों के आधे आधे घुटनों तक शलवारें ऊंची करा दें, फैशन है। मर्द बेचारे टखनों से ऊंची करे, कहते मुल्ला। आज मजहब में वो ताकत नहीं रही जो फैशन में ताकत हो गई, ट्रेंड्स हो गए। और मुझे किसी ने कहा अब तो दाढ़ी लोग फैशन पे रखते हैं, अब तो हीरोज की दाढ़ी है। तो कोई दाढ़ी रखता है लड़का तो मत सोचिएगा बड़ा दीनदार है, सोच के देखिएगा रिश्ता करना है। दाढ़ियाँ तो आज फैशन बन गए, कल वो हिजाब पहन लेंगे आप भी पहन लेंगे, कल वो निकाब करेंगे आप भी कर लेंगे। क्या आज हम मुसलमानों को इस चीज़ का एहसास नहीं है कि हम बहुत बेचारे हैं? आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह तआला कुरान में सूरत मायदा में आप पढ़ेंगे, अफ हुक्म अल जाहिलियत ये बहुत, क्या ये जाहिलियत का तौर तरीका पसंद करते हैं? और याद रखिए मा कबल अल इस्लाम ही हुवल जाहिलिया। फिर इसी तरह एक बहुत बड़ा फितना है आज के मुसलमानों की ज़िंदगी से, कुरान को निकाल दो। वैसे तो वह नहीं निकाल सकते क्योंकि हम इसको छपवाते भी हैं और पढ़ते और पढ़ाते भी हैं, लेकिन ज़िंदगी से निकल गया। निकला कि नहीं निकला? आप अपने ज़िंदगी के एक एक अमल को ज़रा कुरान के आईने से देखना शुरू कर दें, फिर हमें अंदाज़ा होगा कि हमारी ज़िंदगियों की बेबरकतियों की वजह क्या है, कि आज कुरान हमारी ज़िंदगियों से निकला हुआ है। हमारी शादियों में आज खुशी क्यों नहीं, बरकत क्यों नहीं, हर तीसरा घर क्यों बिगड़ रहा है? आपको पता है कि तलाक का रेशो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मंगनियों के छूटना तो अब एक कॉमन सी बात है, इस एक्सेप्टेड, पहले एक्सपेक्टेड था अब एक्सेप्टेड है। वजह क्या है कि कुरान को दीन से निकाल दो, ज़िंदगी से निकाल दो। फिर एक और बहुत बड़ा फितना उम्मत मुस्लिमा में आज, फितना है इनकार हदीस। कुरान सब कुछ है, हदीस कुछ नहीं है। इस पर इंशाल्लाह हम सूरत निसा के शुरू की आयतों में बात करेंगे, कुरान में हर आयत मौजूद है। अब आपको मैं ये जितने फितने बोलूँगी, तकरीबन 20 बोलूँगी आज, लिख सके बस नाम ही लिख के चले जाएँ इतना भी काफ़ी है। इन सब का इलाज आपके पास कुरान में है। और अगर मैं और आप अपने बच्चों के साथ सर फोड़ें, धमकियाँ दें, जज्बातियत की बातें करें, उनको समझ नहीं आएगी। उनको समझ आएगी जब ये कुरान खुलेगा, वो ख़ुद कुरान से वो वाक़यात और हालात पढ़ेंगे, फिर उनको समझ आएगी। फिर इसी तरह से आप देखिए कि एक और फितना है, लहो लाइब में मशगूल कर दो। सूरत लुकमान में इसका जवाब मिलेगा, व मिन अन्नास मन यश्तरी लहवल हदीसी। नज़र बिन हारिस नाम का एक शख्स था उस दौर में, जब उसने देखा कि अल्लाह के नबी पढ़ाते हैं तो बहुत ही असर होता है। जो एक दफ़ा आपकी महफिल में जाता है फिर आपका गर्विदा हो जाता है। उसने इसका तोड़ क्या किया, कहीं बाहर के मुल्क गया, मुल्क शाम, और वहाँ से गाने बजाने वाली औरतें ले आया, जिसको आप कह लीजिए कि जो सिंगर्स थी या जो उस दौर के भी शुगल थे। जब देखता कोई सहाबी नबी सल्लम से मुतासिर हो रहा है, उस पर अपनी एक लौंडी को मुसल्लत करता, इसको खिला पिला, इसको एंटरटेन कर, ताकि इसकी तवज्जो बदले। कल एक नज़र बिन हरस था, आज गली गली नज़र बिन हरस है। आज आपकी स्क्रीन ने, आपका मीडिया, आपकी हर चीज़ के अंदर किस चीज़ का गल्ब है, लहो लाइब में इनको मशगूल कर दो। और उसमें आप देखिए कि सबसे बड़ा फितना आज जो हमारे हाथों में, सेलफोन्स के फितने। हालांकि इसी सेलफोन से इस वक्त इंशाल्लाह यही पैगाम लाखों करोड़ों तक जाएगा अल्लाह ने चाहा तो, लेकिन आज वो हमारी नस्लें जिनको हमने कुरान तो सिखाया नहीं, उनके हाथ में फ़ोन दे दिए, उनको क्या पता क्या लिखना है। सिर्फ 3 लफ्ज़ लिखिए आप जाके फ़ोन में सर्च में, सिर्फ 3 लफ्ज़ लिखिए ABCD में से जो मर्ज़ी, फिर देखिए जो खुराफात आप देखते हैं। अगर आपने अपने बच्चे को कुरान ना दिया, ख़ुद साथ बैठ के उसके ना सीखा, तो उसका जहन तो बच्चा और तजस्सुस इस उम्र में जितना होता कभी भी नहीं होता। तो आपके मेरे घरों में इस कुरान का दौर होना कितना ज़रूरी है। फिर इसी तरह से आप देखिए एक और फितना है और वो क्या है, कर्जों के बोझ में दब जाओ। कल फिर मैंने किसी बैंक का इश्तिहार आपके इस मुल्क में पढ़ा और बिल्कुल वही मैसेज जो मैं पिछले कई दरसों में दे चुकी हूँ कि आप अपने शौक पूरे कीजिए, अपने अरमान पूरे कीजिए, नज़रें हम पे रखें। आइए कर्जे लीजिए और बच्चियों की शादियों में खूब धूमधाम कीजिए। कर्जों के बोझ भी बड़े थे लेकिन जब उसमें सूद और इंटरेस्ट लग जाए तो फिर देख लीजिए। फिर आप देखिए कुफार की रस्म व रिवाज से मरूबियत का फितना। ये रस्म व रिवाज क्या होते हैं? कल्चर ही होता है। बिलीव मी कि एक सिस्टर हमें कहीं मिली, या दर्स था या क्या था मामला, सबको खाना ऑफर किया गया, आप भी आइए। कहती नहीं मेरा रोज़ा है। हमने सोचा कि रोज़ा होगा, नफली रोज़ा होता है। कहती मैंने करवा चौथ का रोज़ा रखा हुआ है। अब आपने जिन्होंने इस्तग़फ़ार किया उनको पता है ये क्या होता है, बाकियों को नहीं पता। शौहर के लिए हिंदू धर्म में रोज़ा रख, रात दिन का होता है, चांद देख के खोलते हैं या बंद करते हैं, वो शीशे में चांद देख कर। कहती मेरी दोस्तों ने आज रखा, मैंने भी रख लिया। और कोई कहेगा क्या हरज है, आप उसको रोज़ा रखने से मना करते हैं? चले बीवी अगर शौहर के लिए कुछ करने ही लग गई तो अब आप कहते हैं ये भी ना करें। ये फितना है आज का, बेइल्मी से भरे भरे। ये कल शब रात गुजरी है लोगों की, जो आपको मैसेजेस आए माफ़ीनामा में। मैं कहती हूँ कितना आसान है आप 1000 लोगों को माफ़ीनामा भेज दें, और कितना मुश्किल है अपने घर के दूसरे कमरे में बैठी रूठी सास को मना लें, और बिगड़ी हुई बहू को मना लें, और शौहर को मना लें, और वो भाई बहन जो जायदाद के मसले में 3 साल से लड़े हुए उनको जाके मना लें, और वो जो रिश्ता छूटा था बहन के घर से उसको जाके मना लें। ये माफ़िया मांग के दिखाइए। वाकई मुझे एहसास होता है अल्लाह के नबी की बात सच हो गई कि दीन सिर्फ रस्म रह जाएगा। रस्मी माफिया नाम है, बख्शिश की रात, पत्ते लग रहे, पत्ते झड़ रहे, आधे लोग सोए होंगे इस वक्त सारी रात की इबादत के बाद, और बात करें तो कहते अस्तग़फ़िरुल्लाह। कल एक सिस्टर थी बताने लगी मैंने कोई पोस्ट शेयर कर दी ऐसी, वो फेसबुक पे इतने नेगेटिव कमेंट उनको आए कि आखिर वो पोस्ट जो थी वो डिलीट करनी पड़ी, कि लोग कह रहे हैं अब आप लोग जो इबादत कर रहे हैं उनको भी रोक रही हैं। बात समझ रहे? तो मैं उनको कहती हूँ मैं कभी भी ऐसी पोस्ट नहीं डालती, वजह ऐसे नहीं बात होगी, ये इल्म की महफिल में होगी। मैं बातें करूं, तनकीद करूं, दूसरा आए अपने हिसाब से कर दे, तीसरा आज कर दे, यही हो रहा है किलो काल। तो इंशाल्लाह तआला कुरान के थ्रू आप साउंड नॉलेज लेंगे अल्लाह के हुक्म से। फिर इसी तरह से आप देखिए जहनी गुलामी का फितना। बिलीव मी कि आज हम जहनी तौर पे गुलाम नहीं हैं। मुझे तो हर बात में बनी इसराइल की मिसालें याद आ रही हैं कि फिरौन के चुंगल से आज़ाद हो गए लेकिन जहनी तौर पर गुलामी से आज़ाद नहीं हुए। मूसा से कहा ये बछड़ा हमें भी बना दो, ज़रा हम भी इसको पूछ लें। आज हम जहनी तौर पे गुलाम हैं, हमारे बच्चों के कपड़ों पे झंडे हैं गैर मुल्कों के, हम फख्र करते हैं उनके जूते उनके नाम ले लेकर, हमें बोलना भी ना है बेशक वो नाम, लेकिन हम उनके नाम ले लेते हैं। फिर इसी तरह से आप देखिए एक और फितना, मुसलमानों पर मुसीबतों के टूटने का फितना। आप पिछले 2 साल में जो जो नाम मीडिया से आए उनको गिनिए, किस किस मुल्क के मुसलमानों के ऊपर ज्यादतियाँ हुई। सीरिया का नाम तो पूरी दुनिया में अब मारूफ है, बर्मा के मुसलमानों को जिंदा आग में जलाया गया, असहाबुल बुरूज की कैफियत याद आ गई। आप क्या सोचते हैं? आप कहते हैं बस जल्द बस ख़त्म करें, जल्दी करें, घर जाएं, लंच तैयार है, मज़े का खाते हैं, मौज करेंगे, शाम को भी जाना है शॉपिंग पे, रात को आज हमें फलां शादी में बुलावा है। दिल करता साथ वाले घर में मैयत पड़ी है और आप अपने घर में खुशियाँ मनाएंगे? वल्लाही आज उम्मत मुसलमान एक जनाजे की कैफियत से गुजर रही है और हमें अपनी मस्तियाँ नहीं ख़त्म हो रही, हम मौज कर रहे हैं, हमें इस इल्म से शगफ़ कम है भी तो वो बस चंद लोग हैं जो लगे हुए। फिर इसी तरह से याद रखिए एक और फितना, अकल परस्ती का फितना। कहते हैं अगर इफ़ आई विल बी कन्विंस्ड देन आई विल एक्सेप्ट, पहले मुझे कायल कीजिए इससे क्या होता है फिर मानूंगा। तो मेरा आपका दीन अकल परस्ती को नहीं मानता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया करते थे कि अगर दीन में अकल का दखल होता तो पाँव के ऊपर जो जराबों पे मसा किया जाता है वो पाँव के नीचे से होता, क्योंकि आप कारपेट पे चले चलो कुछ नीचे थोड़ी बहुत गर्द लग गई उसको झाड़ ले, हालांकि वो ऊपर से होता। अकल तो नहीं है, अकल तो खड़ी रहती और बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में। अपने आप को अपने ऊपर सोच के देखिए, दीन में अकल नहीं चलती। और सबसे पहले दीन के मामले में अकल किसने इस्तेमाल की थी? शैतान ने। अना खैरु मिन्हु खलक्तनी मिन नारिन व खलक्तहु मिन दीन। तो याद रखिए आज अकल बहुत लोग यूज़ करते हैं, इंटेलेक्ट कीजिए, बताइए जी क्या हर्ज है, दिस एंड दैट। और कुछ ज़ुबानें ऐसी हैं जो बड़े बड़े मीडियाज़ पे आके लोगों को और भी शह देने वाली बनती हैं, जिनको पता ही नहीं होता वो बेचारे करेंगे तो क्या। फिर अगला फितना जिसको मेरा लगा कि इस पूरी दीवार जितना बड़ा करके लिखना चाहिए, اتنا بڑا کہ یہ سارے پلر چھپ جائیں. فرقہ واریت کا فتنہ ہے. آج امت فرقوں میں بٹی ہوئی. وہ مولانا حالی بھی جا رہے مرثیے پڑھ پڑھ کے چلے گئے کہ کہیں ذاتیں ہیں تو کہیں برادری ہیں تو کہیں کچھ ہے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس سال اس دورہ قرآن کے لیے پاکستان کو چوز کیا. یہ صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں پورا بھی اتارے, ہم اس ملک کا اس پیاری زمین کا حق دینے والے بنے. جزاک اللہ خیر اور اللہ تعالیٰ آپ کے میرے وقت میں بہترین برکت دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالیٰ خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. یا اللہ ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو قبول فرما. یا اللہ جن ساتھیوں نے اس میں کوشش کی اہتمام کیا ان کا قبول فرما. ایک لفظ سے بھی کسی نے مدد کی تو اس کو اس کا اجر عطا فرما. یا اللہ ہمیں اس میں جو بات اچھی رہی اس پہ سب سے زیادہ خود عمل کرنے والا بنا دے. یا اللہ ہمیں اپنی تنہائی کے وقت میں اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کی توفیق دے. یا اللہ ہمیں غور و فکر کی توفیق دے. یا اللہ ہمیں اس وقت کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو سنوارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنا حساب خود لے لیں تاکہ کل ہمارا حساب آسان ہو. اللہ محاسب نی حساب یسیرہ. یا اللہ ہم سب کو ہمارے نفس کے شر سے بچا. یا اللہ جو بچوں کے لیے پریشان ہیں ان کے بچوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یا اللہ ہمارے اس پیارے سے ملک کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں اس کی قدر کی توفیق دے. یا اللہ اس کو حقیقت میں پاکستان بنانے میں ہمارا حصہ ڈال دے. یا اللہ ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا, شرمندہ نہ کرنا. ہمارے گھر والوں کو, ہمارے شوہروں کو, بچوں کو کہ یا اللہ نیکیوں میں ہم سے آگے لے جا. یا اللہ ہمارے ماں باپ پہ اپنی رحمت فرما. جو زندہ ان کو صحت اور عافیت عطا فرما. جو دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش فرما. ہمارے استادوں پہ بھی اپنی رحمت فرما. اور یا اللہ جو دین کے ساتھ ہی دن رات اپنی کوششیں کرتے ہیں یا اللہ ان کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرما. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. ہمارے ظاہر سے زیادہ ہمارے باطن کو اچھا کر دے. اور یا اللہ دوسروں کا حساب لینے سے زیادہ ہمیں اپنا حساب لینے والا بنا دے. ان سب بہنوں کے دلوں میں کیا بات ہے میں نہیں جانتی, آپ اپنی رحمت سے یا اللہ خود ان کو عطا فرما. اور یا اللہ جیسے ہمارے نبی کے ساتھی اپنا حساب کرتے تھے, احتساب کرتے تھے, ہمیں بھی اپنا حساب کرنے والا بنا دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.